तमात्मनो बीजानियात पति अपत्य गृहात्मकम् दैवोपसादितं मृत्युम् मृगयोगायानं यथा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अतः स्त्री को अपने पति घरवार और अपने बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए मृत्यु होती है। कृपया दोहराइए। अतएव स्त्री को अपने पति घरवार और अपने बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए मृत्यु की होती है। तात्पर्य कपिल देव द्वारा दिए गए इन उपदेशों में यह बताया गया है कि न केवल स्त्री ही नरक का द्वार है अपितु पुरुष भी स्त्री के लिए नरक का द्वार है। प्रश्न आसक्ति का है। मनुष्य स्त्री की सेवा उसके सौंदर्य तथा अन्य बातों से आसक्त होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष के प्रति इसलिए आसक्त होती है क्योंकि वह उसे रहने के लिए स्थान, पहनने के लिए कपड़े तथा आभूषण और संतान देता है। यह तो एक दूसरे के प्रति आसक्ति का प्रश्न है। जब तक इनमें से कोई भी ऐसे भौतिक सुखों के लिए अनुरक्त रहेगा तब तक पुरुष स्त्री के लिए और स्त्री पुरुष के लिए घातक है। किंतु यदि यही आसक्ति कृष्ण में स्थानांतरित हो जाए तो दोनों कृष्ण भावना भावित तो हो जाते हैं और उनका संयोग उत्तम रहता है। अतः श्री रूप गोस्वामी की संस्तुति है। अनासक्त विषय यथा हम उपजंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते भक्ति रसामृत सिंधु। स्त्री तथा पुरुष को गृहस्थ के रूप में साथ साथ रहते हुए कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि इस सेवा में बच्चे, पत्नी, पति सभी लग जाएं तो ये सारी शारीरिक या भौतिक व्याधियां समाप्त हो जाए। क्योंकि चेतना शुद्ध है और कृष्ण माध्यम है अतः पतन का कोई संभावना नहीं रहती। हरे कृष्ण। भगवान कपिल देव के उपदेश चल रहा है अभी। आप जैसे सुन रहे हैं वरिष्ठ वैष्णव भक्तों से ऐसे विषय चल रहा है जो कि हमारे लिए वर्णन करना बहुत कठिन है। फिर भी वैष्णव के आशीर्वाद से और प्रभुपाद जी की शिक्षा अनुसार कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। इस मंदिर में जो प्रभुपाद जी थे तो कुछ भक्तों में बीच में प्रभुपाद के शिष्य के अंदर कुछ चल रहा था। ऐसे कुछ लोग बोल रहे थे कि स्त्री होते जो होते हैं थोड़ा नीचे होते हैं और पुरुष होते हैं थोड़ा उच्च होते हैं। स्त्री श्रेय है, पुरुष श्रेय हैं, बड़े हैं और स्त्री जो होते हैं नीचे रहे हैं। तो ऐसे कुछ स्त्री लोग जाके प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद जी इस प्रकार ऐसे है कि स्त्री जो होते हैं वो नीचे होते हैं पुरुष होते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले हाँ स्त्री जो होते हैं नीचे होते हैं। फिर बोले कि जब तक वो स्त्री अपने को सोचते हैं मैं स्त्री हूं, नहीं तो अगर वो स्त्री सोचते शारीरिक संबंध पर वो सोचते हैं मैं स्त्री हूं, कोई सोचता मैं पुरुष हूं। जीवात्मा ना स्त्री है ना वो पुरुष है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत एक सुंदर शिक्षा उनको दिए कि जब तक एक व्यक्ति सोचता है कि मैं पुरुष हूं और कोई स्त्री सोचता है कि मैं स्त्री हूं, ये शारीरिक संबंध के तौर पर देखता है, अपने को सोचता है, इस प्रकार भावधारा बजाय रखता है, तब तक ये भौतिक स्तर पर है, वो आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रगति नहीं कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार उत्तर उनको दिए हाँ जब तक कोई व्यक्ति अपने को स्त्री सोचती है मैं स्त्री हूं तब तक वो नीचा है। कुछ दो तीन दिन पहले हमें एक गृहस्थ के भक्त के घर में गए थे, तो कुछ चर्चा चल रहा था, चलते चलते उन्होंने बोले कि भागवत में क्या चल रहा है ना, इसी प्रकार चल रहा है, कपिल देव का उपाख्यान चल रहा है। और वहां पर उनका माताजी किचन में कुछ कर रही थी, माताजी बोलने लगी, प्रभु वहां बताया गया है कि स्त्री जो होते हैं माया होते हैं पुरुषों के लिए और नरक का द्वार है। तो मुझे सुनाने दे, मैं क्या बोले माताजी, तो फिर दोबारा उन्होंने दोहराया कि, तो फिर मेरे को एक याद आया श्रीमद् भागवतम में एक जगह बताया गया है कि किस प्रकार वहां पर बताया गया है। अब जो न्यू हरे कृष्ण वर्ल्ड वार देखे होंगे तो उसमें है कि जिस प्रकार यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर कपिल देव भगवान काल भी बताए हैं, परशु के स्वर्ग में भी बताए हैं कि जो स्त्री होते हैं जो आध्यात्मिक जीवन में जो प्रगति करना चाहता है जो व्यक्ति, स्त्री उसके लिए माया है या नरक का द्वार है। तो फिर श्रीमद् भागवत में अन्यत्र कहीं बताया गया है कि, और हरे कृष्ण वर्ल्ड वार में है, तो वहां पर बताया गया है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता है उसको ले क्या चाहिए, नाव चाहिए। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर भव समुद्र से पार करना चाहिए, उधार होना चाहता है, उसके लिए स्त्री चाहिए। तो यहां पर बताया गया, वहां पर अन्यत्र श्रीमद् भागवत में बताया गया है। परंतु यहां तो विपरीत आदि को बोधक लगता है, दो कंट्राडिक्टरी लगता है कि ये तो कुछ बोल रहा है, इधर से कुछ बोला जा रहा है। आप लोग बहुत दिन से इस संबंध में सुने आ रहे हैं, यहां पर किस बात की चर्चा चल रही है कि स्त्री के लिए ऐसे बताया जाने कि पुरुष संग नहीं करना चाहिए, पुरुष को स्त्री संग नहीं करना माया है, तो फिर आज के श्लोक में कुछ और बताया जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को क्या किस प्रकार भावधारा इससे समझना चाहिए, किस प्रकार भावधारा लाना चाहिए कि किस प्रसंग में चर्चा चल रहा है, कि शरीर के लिए चर्चा चल रहा है या कोई और कुछ चीजों के लिए चर्चा चल रहा है, या उससे कुछ गहराई में जाएंगे ऊपर से तो वहां उसके लिए कुछ चर्चा चल रहा है। शारीरिक स्तर पर जब तक व्यक्ति रहता है तो तब तक वो इस प्रकार सोचता है कि, आप लोग देखे होंगे प्रभुपाद जी के कोई वीडियो देखे होंगे जो स्कंद में शुरुआत में किस प्रकार स्त्री पुरुष ब्रह्मचारी संन्यास सब एक साथ बैठते थे और एक साथ कीर्तन करते थे, तो उनमें से कोई नहीं स्त्री नहीं सोचती कि सामने सन्यासी, उस प्रकार भावधारा उनमें नहीं रहता था जब कीर्तन करते थे प्रभुपाद जी सामने बैठते थे। तो उस प्रकार शारीरिक भावधारा चिंता या मन में जो भावना नहीं रहती थी, सब लोग एक साथ सन्यास के पास में स्त्री लोग भी डांस कर रहे थे, प्रभुपाद जी शिष्य हैं। तो उस प्रकार उसी समय हमें देखा, बहुत निरीक्षण से देखा निरीक्षण से, तो वहां पर कोई भी इस प्रकार भावधारा नहीं, शारीरिक स्तर पर वो लोग नहीं थे, सब प्रभुपाद जी के सामने बैठे हैं कीर्तन कर रहे हैं, कहीं और कुछ कहीं गुरु पूजा हो रहे हैं, सब हाथ उठाए कि स्त्री पुरुष सब एक साथ कीर्तन कर रहे थे। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है उसको स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, वो माया है। पर वहां पर देखेंगे प्रभुपाद जी के लीला में तो इस प्रकार सब एक साथ कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोई बुढ़ी स्त्री सन्यासी के सामने कीर्तन कर रहे ना, बहुत यंग बहुत विदेश लोग बहुत सुंदर दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, तो वो लोग सामने एक साथ कीर्तन कर रहे हैं। तो यहां पर एक भावना का, यहां पर प्रभुपाद जी श्लोक में लिखते हैं बहुत सुंदर, एक छोटा सा मैं चार शब्द का एक सेंटेंस लिखते हैं, प्रश्न आसक्ति का है, और एक सेंटेंस उस प्रकार लिखते हैं, जब तक यह तो एक दूसरे के प्रति आसक्ति का प्रश्न है। ये दो सेंटेंस प्रभुपाद जी एक ही सब चीजों के बारे में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, व्यक्ति जब तक शारीरिक स्तर पर रहेगा तो वो आध्यात्मिक जीवन में जो एबीसीडी है उसको समझ नहीं पाएगा। शारीरिक स्तर पर रहेंगे स्त्री है या पुरुष है तो एबीसीडी वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए पहले जमाने में जानते हैं आप लोग कि बच्चे जब 4 साल या 4.5 वर्ष का हो जाता था तो उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था, घर में माता पिता के साथ में उनको शिक्षा नहीं दिया जाता था, आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा हो या भौतिक शिक्षा हो, उनको गुरुकुल में भेज दिया जाता था। गुरुकुल में 25 वर्ष तक वो समस्त प्रकार शिक्षा में पारंगत हो जाता था गुरु के अधीन में, और छोटे से छोटे सेवा कर तो सभी प्रकार विद्याओं में वो पारंगत होता था, ना कि माता पिता का आकर्षण स्त्रियों का आकर्षण, मैंने पहले से जीवन के प्रारंभिक अवस्था से इस प्रकार आकर्षण से दूर रहता था। यानी वो विद्या समझने के लिए व्यक्ति को इस प्रकार जो आकर्षण है स्त्री पुरुष का शारीरिक आकर्षण है भोग वासना है उससे दूर रहना पड़ेगा। तब जब तक व्यक्ति इस प्रकार भोग वासना में शारीरिक आकर्षण में लगे रहेगा स्त्री पुरुष भोग तब तक वो आध्यात्मिक विद्या नहीं समझ पाएगा। आध्यात्मिक जो विद्या की तो दूर की बात है भौतिक विद्या भी समझ नहीं पाएगा वो उसका जो मानसिक स्तर स्थिर नहीं रहेगा। तो इसलिए व्यक्ति को हमेशा जो होता है वो शारीरिक स्तर से दूर रहना चाहिए हमेशा आध्यात्मिक स्तर पे या कम से कम भगवद गीता का जो प्रारंभ में जो एबीसीडी है आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है सबसे पहले जो आवश्यकता होती है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए तो उसको समझना चाहिए और शारीरिक स्तर को अवॉइड करना चाहिए हमेशा दूर में रखना चाहिए। जो यहाँ पर जो आसक्ति की बात है तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि प्रसंगम अजरम पासम कवयः आत्मन विदु सैव साधु सुकृतो मुख्य द्वारम उपावृतम। पुरुष स्त्रियों में आकर्षण आकर्षित होना और स्त्री पुरुषों में आकर्षित होना ये स्वाभाविक है। उन्हें भागवत में बताया जाता है कि प्रसंगम अजरम पास कवयः आत्मन विदु जब व्यक्ति एक विषय वस्तु को भोग करने में लग जाता है या मन को उसी में समा देता है प्रसंग में विषय वस्तु में भोग की विषय वस्तुओं में प्रसंगम अजरम पास अजरम पास वो बन जाता है भौतिक दुनिया में। फिर बोलते सएव साधु सुकृतो मुख्य द्वारम अपावृतम उसी आसक्ति को अगर वो साधु सुकृतो साधुओं के सेवा में या भगवान के सेवा में अगर लगाता है आसक्ति को लगाता है तो फिर मोक्ष द्वारम अपावृतम उनका जो मुक्ति का मार्ग खोल जाता है। यहां पर जो स्त्री और पुरुष के चर्चा चल रही है जीवात्मा न पुरुष है न स्त्री है यहां पर जो बताए जा रहे हैं खासकर जो पुरुष शब्द आए हैं जीवात्मा इस दुनिया में आकर भोग करने की वासना रखते हैं इसलिए दुनिया में आते हैं इसलिए इसको पुरुष बोला जाता है और वो है अधम पुरुष है ये उत्तम पुरुष नहीं है यह अधम पुरुष है। उत्तम पुरुष है भगवान है जिस आध्यात्मिक जगत में जो भगवद गीता में बताया जाता है 15वें अध्याय में आध्यात्मिक जगत में दो प्रकार जीवात्मा है दुनिया में और आध्यात्मिक दुनिया तो अच्युत है मगर ये दुनिया में जो जीवात्मा रहते हैं वो भी दो प्रकार के हैं मगर एक प्रकार जो अच्युत है वो बहुत रेयर होते हैं जो भगवत धाम से आते हैं कुछ अपने कार्यों के लिए भगवान के मिशन के लिए परंतु साधारणतः तो अधिकांश जीवात्माएं ये दुनिया में जो आते हैं वो है च्युत या अधम पुरुष। थोड़ा भगवत गीता में भगवान बहुत सुंदर ढंग से बताया इससे पहले मैं थोड़ा और भगवद गीता के प्रारंभ में बताएंगे कि किस प्रकार भगवान जो सातवां अध्याय में बोलते हैं कि भूमि राप नल वायु खंग मन बुद्धि रेव च अहंकार इत्यादि में भिन्ना प्रकृति रष्टधा भगवान के दो प्रकार शक्ति हैं। भगवान को तो बहुत से शक्ति है साधारण दो प्रकार यहाँ पर बताए जाते हैं भगवद गीता सातवां अध्याय में बोलने की एक है निचतर शक्ति जो है अपराशक्ति भूमि अग्नि जल वायु आकाश ये अपराशक्ति है निचतर प्रकृति और यह एक शक्ति है अपरायम इतस्तु अन्य विद्धि में प्रकृति पराम जीवभूत महाबाहु जयदंग धारियत जगत जो पराशक्ति है वो भगवान के क्या है ना जीवभूत महाबाहु सभी जीवात्माएं हैं वो है शक्ति है। शक्ति शब्द जो आता है वो स्त्रीलिंग है ये समझना चाहिए तो जीवात्मा ही सभी जीवात्मा ही स्त्रीलिंग यहां पर बताया जाता है स्त्रीलिंग शब्द लिया गया है यानी सभी जीवात्मा ही स्त्रीलिंग है क्योंकि पुरुष तो उत्तम पुरुष कृष्ण है पुरुष ही एकमात्र कृष्ण है भगवान है तो सारी जीवात्मा उनके जो सेवक है वो भी सब स्त्रीलिंग है उनका सेवक है सेविका है। तो इसलिए जीवात्मा ना पुरुष है ना स्त्री है वास्तव में भगवान सभी जीवात्मा भगवान के सेवक है दास है। तो यहां पर बताया जाता है कि जो जीवात्माएं है भगवान के दास है स्त्रीलिंग शब्द लिया गया है और 15वां अध्याय में बताया जाता है तीन श्लोकों में पढ़ूंगा द्वा विमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर च एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते जीव दो प्रकार के हैं, चित्त तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। जैसे मैं पहले आप लोग बोला था, उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मने उदाहृत जो लोकत्रय माविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। जस्मात् अक्षरमिति त्वहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषतमः। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं। क्षर जो नीचे यहां पर आध्यात्मिक जगत से नीचे भौतिक दुनिया में आते हैं, अक्षर जो आध्यात्मिक जगत में रहते जो गिरते नहीं कभी, भगवान दोनों के से परे हैं यहां पर। यानी जो मायावादी का फिलोसफी है, उनका दर्शन है कि जो जीवात्माएं हैं वो भी भगवान बन जाते हैं, यहां पर भी यहां खंडन किया जाता है भगवान के द्वारा। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। भगवान ही एकमात्र पुरुष है, वो परम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। सारे जीवात्मा इस दुनिया में जो है वो पुरुष कहलाते हैं शास्त्र में, वो अधम पुरुष है। क्योंकि उनका स्थित स्वरूप स्थिति वो नहीं है, वो तो जीवात्मा का दास है, प्रकृति है। कि भोग करने के वासना में यहां आए हैं इसलिए वो पुरुष कहलाते हैं शास्त्र में बताया जाता है, नहीं तो वो अधम पुरुष है, वो एक्चुअल सब भगवान के दास है। यहां पर रूप गोस्वामी यहां पर देखें पिछले श्लोक में बताया जा रहा था कि किस प्रकार पुरुष जो है भूत अधम पुरुष है दुनिया में, वो जब आध्यात्मिक जगत में जाना चाहता है तो उसको स्त्री के संग नहीं करना चाहिए, या स्त्री मतलब जो विषय भोग विषय वस्तु जो विस्तारित तो होता है स्त्री ग्रहण करने से, सारे प्रकार संसारिक जो सामग्री बढ़ते जाता है और बंधन ज्यादा से ज्यादा होते जाता है, तो वो स्त्री संग नहीं करना चाहिए। वो नरक का द्वार है और माया है। भगवान कपिल देव बोलते हैं कि मेरी माया है वो। परंतु आज के श्लोक में कुछ और बताया जा रहे हैं। अतएव स्त्री को अपने पति घरवार और अपने बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए मृत्यु होती है, यहाँ पर स्त्री के लिए बताया जाता है कि जैसे पति, जैसे चार चीजों यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि स्त्री पुरुष के लिए आकृष्ट होता है चार चीजों के लिए। क्या क्या है? क्योंकि वह उसे रहने के लिए स्थान, पहनने के लिए कपड़े तथा आभूषण और संतान देता है, और भी बहुत से चीजें हैं। मुख्यतः चार चीज प्रभुपाद यहां लिए हैं कि ये चार चीजों के लिए, चार वस्तुओं के लिए एक स्त्री पुरुष के प्रति आकृष्ट होता है। जब तक इनमें से कोई भी ऐसे भौतिक सुखों के लिए अनुरक्त रहेगा तब तक पुरुष स्त्री के लिए और स्त्री पुरुष के लिए घातक है। ये नहीं कह सकते हैं कि स्त्री जो होते हैं बताया जा रहे हैं स्त्री पुरुष के लिए घातक है, माया है, स्त्री माया है। एक बार एक प्रभुपाद से एक व्यक्ति बोले, भक्त बोले कि प्रभुपाद मंदिर में कीर्तन करना माया है, मंदिर में भजन करना अच्छा नहीं, बाहर कहीं जप करना भजन करना है, मंदिर में माया है। तो प्रभुपाद जी बोले कहां माया नहीं है बताइए, वहां जाएंगे भजन करेंगे। मंदिर में माया है तो माया कहां नहीं है, जहां पर वहां पर जाएंगे और भजन करेंगे। तो ये भावना की आसक्ति की बात है, यहां पर आसक्ति का बात है। स्त्री भी स्त्री जो होते हैं वो अगर सोचते हैं कि पुरुष के प्रति आसक्ति होती है तो वो पुरुष स्त्री के लिए घातक है और स्त्री पुरुष के लिए घातक है। तो ये जो आसक्ति क्यों है व्यक्ति के अंदर, स्त्री पुरुष के लिए आसक्त होना, पुरुष स्त्री के लिए आसक्त होना क्यों है, यहां इस दुनिया में क्यों विद्यमान है? अगले किसी श्लोक में पहले आप पढ़े होंगे जो ओरिजिनल फीमेल है वो भगवान है, यानी मूल पुरुष है वो ही भगवान है, और जो वो भी हम जैसे साधारण स्त्री जैसे एक पुरुष को प्रति आसक्ति होता भोग करना चाहती है और एक साधारण पुरुष भी स्त्री को भोग करना चाहता है, तो ये इसलिए है क्योंकि वो भगवान जो मूल पुरुष है उनमें ये भावना है, उनमें ये भावना है क्योंकि ये आदिरस ये आदिरस कहलाता है, ये मूल रस है, ये भगवान में विद्यमान है इसलिए इस दुनिया में भी विद्यमान है। परंतु ये जो आध्यात्मिक स्तर पे विद्यमान है तो वो सब कुछ आध्यात्मिक है, उसमें कोई कलमशता नहीं रहता, उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर जब इस दुनिया में ये रस होता है वो बहुत घटिया तुच्छ होता है, घुण्य होता है, क्योंकि हम लोग त्रिगुण के अंदर हैं। जिस प्रकार एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं थे कभी कभी, इस प्रकार नमक है, नमक कुछ वस्तु में नहीं डालेंगे तो वो वस्तु स्वादिष्ट नहीं होगा, परंतु नमक खराब नहीं है, पर जिस व्यक्ति को जो किडनी खराब है, बीमार है, उसका कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए डॉक्टर मना करता है नमक आपके लिए पॉइजन जैसे है, नहीं खाना है। नमक वस्तु एक वो खराब नहीं है, परंतु बीमारी व्यक्ति के लिए नमक खराब है। तो उसी प्रकार जो ये आसक्ति होना, एक पुरुष स्त्री के प्रति आसक्त होना, स्त्री पुरुष के प्रति आसक्त होना, ये स्वाभाविक है क्योंकि भगवान में विद्यमान है। परंतु जब हमें बीमारी है तो हमें ये फिर स्वादिष्ट नहीं है, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, ये हमारे लिए प्रयोजन नहीं है, यह त्याग्य है। फिर हम क्या करना होगा, हमें बीमार से छुटकारा पाना है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर बीमार से हमें छुटकारा कैसे पाएंगे, मेडिसिन लेना चाहिए, पथ्य और मेडिसिन जो है दवाई, दो चीजें हमें स्वीकार करना चाहिए। तो फिर धीरे 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 हम जब ठीक हो जाएंगे तो फिर हमें नमक खाएंगे ना, फिर उस समय बोलेंगे हमने हम नमक नहीं चाहिए, सब्जी बनाओ कोई भी वस्तु बनाए नमक नहीं चाहिए ना, वो नमक वो एक अच्छी अच्छी चीज है, अच्छी वस्तु है। कई कई लोग होते हैं इस प्रकार संबंध को जो ये जो रस है आदि रस है, जो परक क्या रस या बात्सल माधुर्य रस है, मधुर रस है, इसको वो पसंद नहीं करते हैं, बोलते हैं ये माया, खास कर तो मायावादी लोग तो बोलते ना ये बेकार है, बोलते ये बेकार है। और खास कर कई कई देखे होंगे भगवान श्री कृष्ण को इतना नहीं मानते जितना वो राम को मानते हैं। राम ऐसे ऐसे एक लीला चल रहा था प्रभुपाद जी के साथ कुछ कन्वर्सेशन में है कि कुछ भक्त बोल रहे थे कि अगर भगवान को विश्वास भी कर लें लोग, परंतु फिर वो राम को जूझते हैं, राम को पसंद करते हैं कि फिर राम भगवान बेटर अच्छा है कृष्ण से। तो प्रभुपाद जी बोले वो तो माया है, मूर्ख है, क्योंकि राम कौन है कृष्ण कौन है वो नहीं जानते हैं। तो प्रभुपाद वो ये उदाहरण दे रहे थे कि क्योंकि वो कृष्ण ने बहुत से स्त्रियों के साथ रासलीला किए हैं, संबंध रखे हैं, परंतु राम भगवान प्रजा के हित के लिए एक स्त्री को भी नहीं रखे, तो इसलिए राम भगवान बैरागी हैं, तो फिर वो ठीक है हमारे लिए। लेकिन कृष्ण बहुत स्त्री लोगों के साथ लीला विलास करते हैं तो वो फिर ठीक नहीं है। तो वो इस प्रकार लोग इस प्रकार चर्चा करते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से उनको समझाए किस प्रकार कि कुछ कुछ लोग होते हैं वो भी बोलते हैं कि मेरा पिता बेकार है, गंवार है, कि मेरे को इस प्रकार ऐसे जन्म प्रेम आसक्ति में आकर्षित हो, काम वासना में आसक्त होकर मुझे जन्म दिया है और मैं इस प्रकार स्ट्रगल कर रहा हूँ, इस प्रकार संघर्ष कर रहा हूँ। कोई कोई मूर्ख होते हैं अपने इस प्रकार अपने पिता को मैंने दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि मेरा पिता इस प्रकार मूर्ख है, मुझे इस प्रकार काम वासना में आसक्त होकर आकर मुझे जन्म दिया है, मैं इस पर संघर्ष कर रहा हूं। कि प्रभुपाद नहीं, शास्त्र में बताया गया है पिता को आदर रेस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, ना कि इस प्रकार कुछ सिद्ध रूप में देखना चाहिए। तो उसी प्रकार जो मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान को इस प्रकार बोलते हैं कि भगवान इस प्रकार स्त्रियों के साथ इस प्रकार संबंध रखते हैं, तो मूर्ख है वो। प्रभुपाद बोलते कि ये जो काम वासना आसक्त है, जो रस है, क्या जो स्त्री पुरुष में विद्यमान है यहां पर है, क्या आकाश से गिर पड़ा है क्या पानी के तरफ, माफी नहीं, भगवान शाश्वत परम पुरुष हमारे पिता परम पिता भगवान में है, इसलिए ये हमें ये बीमार के अवस्था में यहाँ भगवान को छोड़कर यहाँ स्वतंत्र रूप से भोगना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है हमारा। नहीं तो कृष्ण के साथ हमें जिस प्रकार प्रभुपाद किसी तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें ये बाह्य सौंदर्य पुरुष स्त्री का सौंदर्य देखना चाहता है, स्त्री पुरुष का सौंदर्य देखना चाहता है, सेम इसी प्रकार सौंदर्य को हमें राधा कृष्ण का सौंदर्य देख सकते हैं, जिस प्रकार हम लोग राधा श्याम सुंदर और कृष्ण बलराम गौर नित्य का सौंदर्य देखते हैं इसी प्रकार घंटे घंटे तक देख सकते हैं। तो राधा रानी कृष्ण इनका सौंदर्य देखने में कोई खराब नहीं है। तो फिर इस प्रकार जो ये जो आसक्ति है ये भौतिक दुनिया में ये है, इससे छुटकारा पाने का क्या फिर उपाय है? खास करके हमारा जो संप्रदाय में रूप गोस्वामी उन्होंने इस प्रकार श्लोक यहाँ पर प्रभुपाद जी ने भी अपना तात्पर्य में लिखे हैं, अनासक्तस्य विषयान पुंसाम यथार्म उपजंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। युक्त वैराग्य ये जो वैराग्य है युक्त वैराग्य, तो इस प्रकार ये युक्त वैराग्य अपनाना चाहिए आज इसमें से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि हमें तो कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कि धर्म आचरण करेगा और भगवान भजन कीर्तन करेगा हरि नाम जप करेगा प्रचार करने के लिए जाएगा स्त्री को नहीं देखेगा, या कोई स्त्री ऐसे जाएगा इस प्रकार भगवान के प्रचार कार्य में जाएगा प्रभुपाद जी के मिशन के लिए जाएगा कहीं और कोई पुरुष को नहीं देखेगी, ऐसे तो नहीं हो सकता। या कोई गृहस्थ जीवन में कोई स्त्री पुरुष के साथ में नहीं रह पाएंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता है। या ट्रेन में नहीं जाएंगे, बस में नहीं जाएंगे, बाहर निकलते ही इस प्रकार छाप आ जाते हैं सामने में, तो हमें किस प्रकार इसको देखना चाहिए और किस प्रकार इसको डील करना चाहिए व्यवहार के जीवन में। अनासक्त से जो अनासक्त रहना ये साधारण वस्तु की व्यक्ति की बात नहीं है, यह साधारण वस्तु नहीं है ये अनासक्त रहना। कृष्ण विज्ञान में कृष्ण भावना तो जो विज्ञान है ये कृष्ण विज्ञान में जो व्यक्ति पारंगत तो नहीं है तो वो व्यक्ति माया का जंगल में तो आएगा ही आए। व्यक्ति को जो कृष्ण विज्ञान है जो भक्ति विज्ञान है उसमें बहुत पारंगत होना चाहिए, लक्ष्य हमेशा रहना चाहिए कि हमें इससे छुटकारा पाए, ना कि हमें इसमें ऐसे ढीला छोड़ देना चाहिए। इंद्रियों जैसे घोड़ों की माफी है, घोड़ों को लगाम ढीला कर देंगे तो किधर भी भाग चले जाएंगे, पांच इंद्रिय पांच दिशा में भाग जाएंगे। तो हमेशा हमें इंद्रियों को बस में रखने की या लगाम में अपना नियंत्रण में रखना चाहिए। तो फिर हमें नियंत्रण में रखना कैसे, ना एक उच्चतर रस हमें जो आस्वादन करेंगे जो उच्चतर आनंद लेंगे तो ये इंद्रियों के माध्यम से, तो फिर हमारे इंद्रिय अपने आप कंट्रोल में नियंत्रण में आएंगे। क्या है वो उच्चतर आनंद? भगवान की भक्ति। एक महाप्रभु के जो चैतन्य महाप्रभु जो स्वभक्ति श्रियम जो महाप्रभु के जो ये भक्ति दिए हैं सारे समस्त जनसाधारण को, वो जो भक्ति है वो विज्ञान हमें भक्ति विज्ञान हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, तब तो हमें बहुत आसानी से इस प्रकार माया से छुटकारा मिल पा सकते हैं। ऐसे तो छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी अपना हमारा नियंत्रण में रह सकता है। हमारा परंपरा में ऐसे एक से एक उदाहरण है किस प्रकार वो माया के कितना बड़े बड़े उनका स्ट्रगल आए हैं जीवन में, तो वो छुटकारा पाए गए हैं। खास करके चैतन्य महाप्रभु के समय हरिदास ठाकुर के लीला में आप जानते हैं किस प्रकार माया देव दो बार आए हैं, एक तो जो रामचंद्र खान ने भेजा था मिश्या को और दूसरी बार जो स्वयं माया देवी ने आई थी, दोनों ही अपने हरिदास ठाकुर के शरण में आकर हरि लास्ट में उनको गिराने के लिए आए थे, उनका टेस्ट करने के लिए आए थे, फिर लास्ट अंत में हरिदास ठाकुर के शरण में गए और उनसे दीक्षा लिए भगवान का नाम भक्त हुए जप के। तो ये जो भक्ति विज्ञान है बहुत कठोर ये स्ट्रांग है, बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा और कुछ ऐसे है नहीं जो योग ध्यान तपस्या कुछ भी और पंथा बताइए ऐसे नहीं है जो भगवान के जो माया है उससे उबार सकते हैं। भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्तया महामे जो प्रपद्यंते माया में तम तरंते, माया से छुटकारा पाने का यही एकमात्र उपाय है कि गुरु के आदेश अनुसार भक्ति के साधन भक्ति की कड़ाई से पालन करना चाहिए। गुरु के हमेशा व्यक्ति को हमेशा अपना गुरु से पूछना चाहिए कि गुरुदेव क्या चाहते हैं आप, किस प्रकार सेवा हम आपसे आप हमसे आशा रखते हैं, क्या क्या हमें दिन प्रति जीवन में हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, किस प्रकार भाव रखना चाहिए। जब हम गुरु को प्रसन्न करने का इस भावना में हमेशा रहेंगे तब हमें और दूसरा अल्टरनेटिव नहीं रहता है, नहीं तो हमें उसी दिग में जाना ही, हम अपना एक मिशन खोलना शुरू कर देते हैं। जो गुरु के मिशन के साथ हमें जुड़े रहते हैं तो फिर हमें गुरु के जो लाड़ प्यार है वो मिलता है हमें गुरु की सेवा करने से। जब हमें गुरु का सेवा छोड़कर हमें कुछ सेवा से आनंद नहीं आता या इसे नेग्लेक्ट करते तो फिर हमें क्या होता है ना, एक अपना और मिशन खोलने का योजना आ जाता है, तो फिर हमारा दुख शुरू हो जाता है। जब तक व्यक्ति भोग वासना करने की इच्छा नहीं करता है तब तक ठीक है, जैसे ही भोग वासना करने की इच्छा करता है या कार्य आरंभ शुरू करता है तब तक दुख शुरू हो जाती है। तो यहां पर बताया जाता है स्त्री तथा पुरुष को गृहस्थ के रूप में साथ साथ रहते हुए कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि इस सेवा में बच्चे पत्नी पति तथा सभी लग जाएं तो ये सारी शारीरिक या भौतिक व्याधियां समाप्त हो जाएं। क्योंकि चेतना शुद्ध है और कृष्ण माध्यम है अतः पतन की कोई संभावना नहीं रहती। इस समाज में जगत में 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। तो ये विज्ञान समझना चाहिए, भक्ति विज्ञान समझना चाहिए, किस प्रकार एक स्त्री को पुरुष साथ रहकर या स्त्री पुरुष को स्त्री के साथ रहकर ये भक्ति जो जीवन व्यतीत कर सके। एक पुरुष को एक स्त्री को हमेशा पुरुष के अधीन में रहना चाहिए या पुरुष के प्रति 100% शरणागत रहनी चाहिए और जो पुरुष है अपने गुरु के प्रति 100% शरणागत रहना चाहिए, ना कि और किसी एक पुरुष को स्त्री के प्रति 100% शरणागत रहना चाहिए, ये तो फिर उल्टा हो जाएगा। एक स्त्री को 100% स्वामी के शरणागत रहना एक रिकमेंड है, माने ये निर्धारित है, परंतु पुरुष को अपने गुरु के प्रति 100% शरणागत रहना चाहिए तब फिर भक्ति जीवन सीधा चलता। पुरुष अपना गुरु से जो आदेश लेता है उसके मुताबिक चलता है और जो स्त्री अपना पति के प्रति जो शरणागत रहती है तो फिर उनसे वो आदेश लेती है और वो उनका जीवन दोनों साथ साथ रहते हैं। नहीं तो स्त्री पुरुष के जो गृहस्थ जीवन में स्वामी स्त्री में जो संबंध है वो तो फिर बहुत अपना कोई नियंत्रक नहीं रहे हैं परिवार, क्योंकि पुरुष स्त्री को नियंत्रित तो करेगी, स्त्री पुरुष स्त्री को नियंत्रित करेगा और स्त्री पुरुष को नियंत्रित करेगी, तो इस प्रकार एक दूसरे के साथ फाइटिंग करेंगे। वो बोलेगे तुम मेरा सेवा करो, वो बोलेगा तुम मेरा सेवा करो। आजकल के स्कूल कॉलेज में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े डिग्री हासिल करते हैं, फिर स्वामी चले जाते जॉब में, स्त्री भी चले जाती जॉब में, फिर घर में सब काम ऐसे पड़े रहते हैं, कभी होते नहीं होते झगड़े लगते हैं, तो पुरुष बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं किया अब तक, मैं इतना करके इधर से इधर आया कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किए हैं, तो फिर स्त्री बोलती कि तुम क्या करते हो, तुम तो इधर उधर चलते, मैं भी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मेरा ड्रेस सफाई करो तुम। तो इस प्रकार एक दूसरे पूरा बराबर चलते हैं, जब तक बराबर चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। इस प्रकार भगवान ने बनाए हैं कि स्त्री को 100% अपना पति के शरणागत में रहनी चाहिए, तो फिर और पति को गुरु के शरणागत में, तो फिर भक्ति जीवन जो है शुरू मैंने बहुत सरल से चलते रहेगी। अब समय होने वाला है और 5 मिनट है, जो क्वेश्चन किसके कोई प्रश्न है या क्या है। किसी कोई प्रश्न नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, इतर गौर प्रेमानंदे।